ऑस्ट्रेलिया में 2 जुलाई को फेडरल चुनाव होगा। प्रचार तेजी पर है और सभी दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने पे लगे हुए हैं। इन चुनावों को मद्देनजर रखते हुए हमने जानने की कोशिश की भारतीय मूल के वह लोग जो इस बार वोट डालने के लिए एलिजिबल होंगे, उनकी नजर में इन चुनावों के मुख्य मुद्दे क्या हैं। हमने बात की ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न, साउथ ईस्टर्न सबर्ब्स के कई जाने माने लोगों से। संजय सेठी, जो कि टारनीट निवासी हैं, मानते हैं मेडिकेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिटी सेफ्टी जो भी अगली सरकार बनाए उनके एजेंडा में होना चाहिए।
काफी मुद्दे हैं जो कि सामने आ रहे हैं इंडियन कम्युनिटीज के लिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि कम्युनिटी की सुरक्षा बहुत ही मुद्दे में है, इम्पोर्टेंट रखती है, जो कि इस समय मेन अहम मुद्दा है। कम्युनिटी सुरक्षा और ये जो क्राइम बढ़ रहा है इसके लिए हमें क्या कर सकते हैं ये देखना है आने इलेक्शन में। ये हमारे मुद्दे बहुत ही मायने रखते हैं। दूसरा मुद्दा ये कह सकते हैं कि आजकल जो हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है हमारा जो यहाँ पे देखने में आया है इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटीज है जैसे कि रोड्स हैं, ट्रांसपोर्ट है, उसमें कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। रोड्स नहीं है और जब जाते हैं सुबह लोग अपना काम के लिए तो स्टेशन पे पार्किंग की जगह नहीं है, रास्ते में गाड़ियां रुकती हैं और जहाँ हम थोड़े समय पहुंच सकते हैं उतने इतना टाइम लगता है कि बहुत मुश्किल होती है। और पार्किंग सुविधाएं नहीं है, रोड इतनी खराब हो गए हैं कि उसमें इतना ट्रैफिक जाम होता है कि आने जाने में सारा दिन लग जाता है। और तीसरा मुद्दा ये देखने में जो बहुत अहम लगता है आजकल जो आने वाले इलेक्शन में कि गवर्नमेंट जो कहती है कि हेल्थ फैसिलिटीज तो है हर तरह से, लेकिन उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए जिसमें कि जो मेडिकेयर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मिडिल क्लास फैमिली के लिए, स्पेशली हमारे जो इंडियन कम्युनिटीज के लिए, कि मेडिकेयर के बेस पे जो रिबेट उन्होंने खत्म करने की सोच रहे हैं जो बहुत ही नुकसानदेह हो सकती है और हम कैसे फैसिलिटी यूज कर सकते हैं, इसको आगे बढ़ाने की बहुत जरूरत है, ये देखने में आना है।
संजय से सहमति रखते हुए डॉक्टर गणेशन दुरस्वामी मानते हैं कि पिछली कई सरकारों में मेडिकल और हेल्थ मुद्दों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है।
आई थिंक हेल्थ हैज टेकन अ बीटिंग ऑल दिस इयर्स एंड पर्टिकुलरली बोथ द पार्टीज हैड नॉट गिवन सीरियस कंसीडरेशन एज नॉट गिवन हेल्थ एज अ प्रायोरिटी। आई थिंक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट व्हिच इज अ बर्निंग इश्यू इज अबाउट द जीपी टैक्स, प्रपोज्ड जीपी टैक्स, एंड दैट कुड अफेक्ट द accessibility of basic medical services for vulnerable people, particularly people, migrant population, when they are coming into the country and they don't have much access into private health care. I think that is going to affect their accessibility to health. In addition to that, I think there has been a significant dysfunction between the, in Victoria, particularly the Labor government and the federal Liberal government over funding for the hospital services, and I think a lot of allied services have been cut off because of lack of funds in the last couple of years. Because of the primary health itself has taken a backstage, mental health is not at all taken into consideration, and I think and there is a need for a separate ministry within the federal to look into those issues.
भावना ठकराल मानती हैं कि जो मौजूदा चाइल्ड केयर रिबेट है उसे $7,500 से बढ़ाकर $10,000 के आसपास कर दिया जाना चाहिए।
मेरे को लगता है अमित जी की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इस टाइम पे हमारे लिए है कि चाइल्ड केयर सेंटर्स जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव हैं यहाँ पर अभी इस टाइम पे, मेरा खुद का एक 3 साल का बेटा है एंड ही गोज टू डे केयर और हमें जो मैक्सिमम रिबेट मिलता है वो 7500 का मिलता है, 7500 का, और वो इट्स नॉट सफिशिएंट। जितना हम लोग अर्न कर रहे हैं उसके हिसाब से वी कैन, इट्स रियली वेरी एक्सपेंसिव। हम लोग अभी भी हमारा जो है जो रिबेट है वो तो 6 मंथ्स के अंदर ही हमने देखा कि फिनिश हो गया, एंड अभी हमारी जो पर डे की हमारा एक्सपेंस जो डे केयर का ही है अकेला बच्चे का वो $100 है, और ये भी स्टैटिक नहीं है, एवरी ईयर इट्स इंक्रीजिंग। अभी इस बार फिर से वो बढ़ गया है और हर साल वो $7 के हिसाब से कुछ बढ़ा देते हैं जो कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन के लिए अफोर्ड करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो मेरा मानना है कि जो भी गवर्नमेंट रूल इस टाइम पे इलेक्शंस में विन करती है उनको इस चीज पे ध्यान देना चाहिए, एक कॉमन मैन की नीड्स को का भी ध्यान रखना चाहिए और देखना चाहिए कि अगर वो लोग चाइल्ड केयर सेंटर्स के रिबेट्स जो है वो बढ़ा सकें ताकि सब लोग उसके अफोर्ड कर सकें और बच्चों को इजीली सेंड कर सकें, वहाँ पे डे केयर में भेज सकें और अपना आराम से अपने काम पर जा सकें। और दूसरी चीज जो यहाँ पे ध्यान देने की है कि चाइल्ड केयर सेंटर्स में इतनी मतलब जो फैसिलिटीज और मिल रही हैं वो भी अप टू द मार्क नहीं है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हूसोएवर विंस इन दिस इलेक्शन दैट प्लीज इंश्योर दैट दे एक्चुअली कंसीडर ऑल दीज थिंग्स एंड यू नो वर्क ऑन द चाइल्ड केयर रिबेट्स एंड चाइल्ड केयर फैसिलिटीज दैट दे प्रोवाइडिंग टू एवरीवन।
श्रीराम अय्यर, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया में लोग सायर के नाम से भी जानते हैं, मांग कर रहे हैं कि मल्टीकल्चरल आर्ट्स को दिया जाने वाला अनुदान बढ़ाया जाना चाहिए।
जी बिल्कुल अमित जी, देखिए मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, 15-16 सालों से मैं स्टेज पे गाता आ रहा हूँ, कई सालों से रिकॉर्डिंग स्टूडियो में भी हमने काफी प्रोजेक्ट्स किए हैं, मैंने एक एल्बम निकाला था 2007 में जैसे आपको याद होगा। तो आर्ट्स में मेरे अलावा काफी ऐसे आर्टिस्ट हैं यहाँ जो बहुत एक्टिव हैं और जो एक करियर परस्यू करना चाहते हैं आर्ट्स में, तो और उसके लिए कई जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं उनमें से एक जो बहुत मायने रखता है वो है कि जो गवर्नमेंट जैसे सपोर्ट करती है, हम तो इंडिया से हैं वहां तो गवर्नमेंट बस हमसे लेती ही रहती है, तो हमें ये बात की आदत नहीं है कि गवर्नमेंट हमें सपोर्ट भी कर सकती है। तो एक तो एक नॉलेज थिंग है कि भाई एज एन आर्टिस्ट यहाँ पे काफी ग्रांट्स हैं, वो सुविधा है, वो फैसिलिटी है जो आर्टिस्ट उसको फायदा उठा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि चलो आर्टिस्ट ने एक ग्रांट मांगा और मिल गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे प्रोसेस है, कायदा है, तो जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल विक आर्ट्स है जो हर साल दो राउंड्स करती हैं क्रिएटिव फंडिंग के लिए, तो चाहे म्यूजिक हो या लिटरेचर हो या डांस हो या विजुअल आर्ट्स हो, तो कई चीजों में उन्हें फंडिंग मिलती है विच रन्स इनटू मिलियंस ऑफ डॉलर्स, तो वो एक अच्छी बात है। लेकिन एज एन आर्टिस्ट जो मैंने नोट किया है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने खुद काफी ग्रांट्स के लिए अप्लाई किया है, सक्सेस रेट कम है, और जो रिप्रेजेंटेशन मैंने जो देखा, ये मेरा निजी राय है, जो रिप्रेजेंटेशन मैंने देखा उसमें मल्टीकल्चरल रिप्रेजेंटेशन मुझे ज्यादा नहीं दिखा, स्पेशली एशियन सब कॉन्टिनेंट से। मुझे जैसे नॉवल राइटिंग में मैंने काफी ग्रांट्स के लिए एप्लीकेशन किया है और फीडबैक अच्छा मिला भी है कि भाई एशियन सब कॉन्टिनेंट से कोई लिख रहा है अबाउट वेरी प्रेसिंग इश्यूज, लेकिन फिर भी वो ग्रांट्स में सक्सेस मुझे नहीं दिख रहा, नॉट जस्ट मी पर्सनली, जैसे हम विनर्स लिस्ट या जिनको अवार्डीज दिया गया है वो अगर देखा जाए हर साल, तो उसमें हमारा रिप्रेजेंटेशन थोड़ा कम है एज फ्रॉम द एशियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये आई थिंक इम्प्रूव हो सकता है, इसमें थोड़ा डिजर्विंग कैंडिडेट्स को ही मिलना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुझे मिलना चाहिए, पर डिजर्विंग कैंडिडेट्स को मिलना चाहिए, आई थिंक एप्लीकेशंस में भी थोड़ी इंक्रीज हो सकती है और उसके लिए अवेयरनेस की जरूरत है। तो आई थिंक प्लेटफॉर्म है, होपफुली मेरे जैसे कई आर्टिस्टों को इन ग्रांट्स से मदद मिल सकती है।
सक्षम कात्याल, जो कि आईटी और लीडरशिप एक्सपर्ट हैं और इनकी विशेषता है कि ये नए आए प्रवासियों के साथ ही काम करते हैं, मानते हैं कि आने वाली सरकार को समुदाय के युवा नेताओं के साथ हाथ से हाथ मिलाकर काम करना चाहिए।
अमित जी, आप देखिए कि एशियन कंट्री से काफी ब्रेन ड्रेन हो रहा है और ये ब्रेन ड्रेन ऑस्ट्रेलिया का ब्रेन गेन है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट की तरफ से देखें तो इसके ऊपर कोई बहुत मेजर कोई फोकस या कोई प्रोग्राम या पॉलिसी हमें देखने को नहीं मिलती है कि वो ऐसी जो फोर्स है जो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेट हो रही है उसको कैसे बेटर यूटिलाइज वो करना चाहते हैं। आप देखिए लास्ट सेकंड में 1.2 मिलियन जो है ऑलमोस्ट इमिग्रेंट्स ने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेट किया है, लेकिन उसके पैरल अगर आप कॉर्पोरेट में देखें, पॉलिटिक्स में देखें या किसी और एरिया में देखें, उतनी मेजर आपको इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखती है। सो मेरे हिसाब से अगर मैं जैसे काफी यूथ के साथ काम करता हूँ, उनकी कुछ जो न्यूली इमिग्रेंट जो माइग्रेंट्स हैं उनके साथ कोई उनकी प्रॉब्लम्स हैं या कुछ इश्यूज हैं उनके लेके मैं काफी इन्वॉल्व रहता हूँ, तो मेरे को जो फर्स्ट हैंड जो इन्फॉर्मेशन मिलती है या प्रॉब्लम दिखती है वही दिखती है कि उनकी सिमुलेशन इनटू द मेन स्ट्रीम कॉर्पोरेट वर्ल्ड और सोसाइटी में उनकी थोड़ी सी दिक्कत है। सो मैं समझता हूँ इसके ऊपर काफी काम करने वाला बाकी है, जैसे वुमेन इंक्लूजन फीमेल को लेके काफी कॉर्पोरेट में आज के टाइम पे अवेयरनेस है, मैं समझता हूँ कि ये कल्चरल डाइवर्सिफिकेशन को लेके बहुत काम हम लोग कर सकते हैं, और एक एक अगर हम उनको कुछ रिवॉर्ड भी दें तो इट एक्चुअली विल बिकम अ वेरी वेरी मेजर सॉर्ट ऑफ अट्रैक्टिव फैक्टर फॉर दोज कॉर्पोरेट। सो मैं समझता हूँ इसके ऊपर काफी काम करने वाला बाकी है
और डेफिनेटली यूथ को लेके तो हर लोग आजकल बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ पॉलिसीज या प्रोग्राम्स हैं, अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करें तो इट विल बी मच मच बेटर।
मसाला फुटबॉल क्लब के अध्यक्ष तारक शाह सक्षम की बातों से सहमति जताते हुए मानते हैं, अगर आप नए आए प्रवासियों को ऑस्ट्रेलिया के सांस्कृतिक विरासत में पिरोना चाहते हैं तो खेल को ही सही माध्यम चुनकर उससे अनुदान दिया जाना चाहिए।
जी बेसिकली अमित जी, हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट से कि ऑफ कोर्स अब गवर्नमेंट को जब पता है कि इतने सारे डिफरेंट मल्टी कल्चर से सारे लोग आके ऑस्ट्रेलिया में फंस रहे, मेलबर्न में फंस रहे, और एक जिस हिसाब से मैं स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा हूँ, मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट अगर थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा अगर फंडिंग या ग्रांट स्पोर्ट्स क्लब के लिए, अगर मल्टीकल्चरल फैलाने के लिए अगर ग्रांट करे तो काफी बढ़िया होगा। इससे फायदे बहुत सारे होंगे, क्योंकि जैसे कि एक फायदा ये है कि सबसे बड़ा कि आपके पास नए प्लेयर्स आएंगे जिन्होंने कभी जैसे कि कोई स्पोर्ट नहीं खेला, जैसे कि आप ले लो AFL फुटबॉल, उन्होंने ना ही कभी AFL फुटबॉल खेला होगा, तो उन्हें मौका मिलेगा AFL फुटबॉल खेलने के लिए। तो एक स्पोर्ट के द्वारा हम एक मल्टीकल्चरलिज्म भी स्प्रेड कर रहे हैं और एक हम स्पोर्ट्स गेम भी हम बेसिकली प्रमोट कर रहे हैं, जो काफी बढ़िया मेरे हिसाब से विचार है। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से गवर्नमेंट मल्टीकल्चरल पर भी फोकस कर रही है, ये बढ़िया होगा कि अब नेक्स्ट स्टेप गवर्नमेंट का ये हो कि अच्छा स्पोर्ट में भी हम थोड़ा फोकस करें। जैसे कि अभी थोड़े टाइम पहले डैंडीनोंग में उन लोगों ने इंडियन प्रिंसेट के लिए काफी बढ़िया फंडिंग दिया था, वो वैसे ही अगर स्पोर्ट्स के लिए अगर कुछ एक्स्ट्रा फंडिंग हो जाए तो मेरे काफी लोग आ पाएंगे खेलने के लिए स्पोर्ट्स।